हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 40। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। श्री भगवान उवाच पार्थनैविहनमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति पार्थनैविहनमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति पार्थनैविहनमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति पार्थनैविहनमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति पार्थनैविहनमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। शब्दों का अर्थ श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, पार्थ हे पार्थ, न एव कभी ऐसा नहीं है, इह इस संसार में न कभी नहीं, अमूत्र अर्थात अगले जन्म में विनाशस्तस्य विद्यते, विनाश मतलब नाश, तस्य मन उसका, विद्यते होता है, नहीं न मतलब नहीं, ही मन निश्चय ही, कल्याण कृत जो शुभ कार्यों में लगा हुआ है, कश्चित कोई भी, दुर्गतिम तात गच्छति, दुर्गतिम अर्थात पतन को, तात हे मेरे मित्र, गच्छति जाता है। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में 1.5.17 में नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजं हरि भजन्न पकोथ पतितो यदि यत्र कवा भद्रमभूदमुष्य किम् कुवार्थ आप्तो अभजताम् स्वधर्मतः। अर्थात यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है ना ही पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का बड़ी त्याग करना होता है। कोई यह तय कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाए तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण शाश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होती। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कर्मों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं है कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाशक इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलि तथा निर्बल लोग पाशक वृत्तियों से पूरित होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार निद्रा बई तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा दुखमय होते हैं। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भौतिक संपन्नता की का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। नंबर दो, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। और नंबर तीन, कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्रियों की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को भी जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण से वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वो है जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता है, वह रंच मात्र भी कल्याण प्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है। जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो लोग जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय हो। इस अत्यंत ही आध्यात्मिक और अद्भुत ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृच्छातम् सह गणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरु भयश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासवी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। अत्यंत ही सुंदर श्लोक, अत्यंत ही पवित्र और प्रेम से ओतप्रोत शब्द भगवान श्री कृष्ण आज बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने जो प्रश्न किया था उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे कृष्ण, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सफल नहीं हो पाता, वो प्रयास तो करता है, अयति श्रद्धयोपेता योगा चलति मानस, वो प्रयास करता है श्रद्धा के साथ, परंतु उसका मन विचलित हो जाता है। अब प्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति, वो संसिद्धि तो प्राप्त नहीं करता तो उसकी क्या गति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण आज बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन को दो बार संबोधित किया। पहले कहा पार्थ, पार्थ कहकर भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे बुआ के पुत्र हो, तो मुझे भी तुम्हारा, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे कल्याण की बात ही बता रहा हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में चिंता है। और आगे कहते हैं तात, तात का मतलब होता है मेरे प्रिय मित्र, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और जिसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, हम सदैव उनके कल्याण के विषय में ही सोचते हैं। तो जिसका भगवान जिसका मित्र होगा, तो जाहिर सी बात है भगवान उसे जो बता रहा होगा वो कितना उसके कल्याण के लिए होगा। तो भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, ये जो तुम पूछ रहे हो ना कि भक्ति मार्ग में यदि सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो क्या उसका पतन होगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। पार्थ नए नए वेह, एह मतलब इस, कभी भी ऐसा नहीं है। एह का मतलब होता है इस संसार में, नैव एव कभी भी इस संसार में, ना मुत्र ना ही अगले जन्म में, विनाशस्तस्य विद्यते उसका विनाश नहीं हो सकता। बेफिकर हो जाओ जब भक्ति मार्ग में लगो। क्योंकि न ही इस लोक में और न ही अगले जन्म में विनाशस्तस्य विद्यते, उसका कभी विनाश नहीं होगा। क्यों? नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, जो वास्तव में कल्याणकृत कार्य करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। दुर्गति मतलब उसका कभी पतन नहीं होता है, उस पर कभी बुराई विजय नहीं पाती है, पराजित नहीं कर सकती उसको। और अत्यंत ही सुंदर रीति से श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि भागवतम में जो बताया 1.5.7 में, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे, कि अपने भौतिक कर्तव्यों का परित्याग करके यदि भगवान की भक्ति कोई शुरू करता है, भजन न पक्कोथ पते ततो यदि, लेकिन वो भक्ति में भी परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। पहले तो बेचारा अपने स्वधर्म का छोड़ दिया और भगवान की भक्ति शुरू करने लगा, लेकिन भक्ति भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाया, भक्ति की सिद्धि को भी प्राप्त नहीं कर पाया, तो भी भगवान आगे वेद व्यास जी को नारद मुनि बता रहे हैं, यत्र कवा भद्रम अबोधमुष्यकम, उसका कोई हानि नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है अगर उसने भक्ति की सिद्धि को भी प्राप्त नहीं किया। परंतु कोवार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मम, लेकिन अगर किसी ने भगवान की भक्ति नहीं की और भले ही पूरी जिंदगी अच्छे तरीके से अपने स्वधर्म को निभाता रहे, तो भी उसका कोई फायदा नहीं, उसका जीवन पूरा व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई है कि भागवत इस श्लोक के द्वारा हमें आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होती। क्योंकि वो कभी भी अपनी भक्ति, भले ही उसको अगर भक्ति करने के बाद कोई ऐसा जन्म भी मिल जाता है जिसमें के ना मतलब पशु का भी जन्म मिल जाता है, लेकिन फिर भी शुद्ध कृष्ण भावनामृत कभी भी विस्मृत नहीं होती। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में भले ही निम्न योनि में भी जन्म लेता है, फिर भी पहले की भांति भक्ति करता है, इससे ही फर्क नहीं पड़ता। ये पतन नहीं होता है कि आपका जन्म कौन सा हुआ है, पतन तब होगा जब आप जो है आपकी मानसिकता दूषित हो जाएगी। लेकिन यदि हम भक्ति करते हैं भगवान की, तो फिर कभी भी चाहे हम किसी भी योनि में चले जाएं, तो भी हम उसमें भी भक्ति कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे इंद्रद्युम्न राजा, वो हाथी बन गया लेकिन फिर भी उसको याद था गजेंद्र, मोक्ष में उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं गाई हैं जो कि संस्कृत में उन्होंने याद की थी। इसी के अलावा हम अभी इसके विषय में बहुत सारी चर्चा करेंगे कि यदि वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेता है तो भी पहले की भांति भक्ति कर सकता है। परंतु दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है, तो आवश्यक नहीं है कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। अगर वो अपने कर्तव्यों का बहुत ही अच्छे तरीके से पालन करेगा लेकिन भक्ति नहीं कर, तो उसको कभी भी अच्छा लाभ प्राप्त नहीं हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर एक शब्द उच्चारण किया है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, जो वाकई में कल्याण कृत कार्य करता है यानी शुभ कार्य करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। तो हमें सबसे पहले तो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा ये समझना है कि कल्याण कृत कार्य क्या है। तो अंतिम पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की है कल्याण कृत कार्यों की। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कल्याण मार्ग के अनुयायी को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अब पहले तो वो लोग जो कल्याण कृत कार्य नहीं करते हैं उसके बारे में बताया कि वो तो सिर्फ पशुओं की तरह आहार निद्रा भाई मैथुन की जिंदगी को बिताते हैं, उनके जीवन का तो कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। लेकिन जो अभी कल्याण कृत कार्य करते हैं उनको भी तीन पोर्शन में डिवाइड किया है। पहला क्या है? भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। एक यहाँ पर भी दो है लिखे हुए कि एक तो भौतिक संपन्नता का उपभोग, मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं और ज्यादा से ज्यादा है ना सकाम कार्य करूं, यानी कि गलत कार्य नहीं करूं, सकाम कार्य करूं और शास्त्रीय विधि विधानों का अनुयाय, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार में पालन करूं और उसके द्वारा भोग प्राप्त करूं। नंबर दो, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, यानी कि जो भौतिक जगत से बहुत ज्यादा ऊब जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है और मुझे ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना है ताकि मैं आनंद से वहां पर रह सकूं, भोग कर सकूं। लेकिन भौतिक कोई भी वस्तु की उसको कामना नहीं होती, स्वर्ग प्राप्ति की भी इच्छा नहीं होती। और तीसरे कौन से होते हैं? कृष्ण भावनामृत के भक्त। अब ये तीन है, एक कौन से? जो भौतिक संपन्नता के उपभोगी होते हैं, जो सत्काम कर्म करते हैं और शास्त्रीय विधि विधानों का पालन करते हैं और चाहते हैं कि मुझे ये फल प्राप्त हो। और दूसरे संसार के प्रति बहुत ज्यादा जो हीन भावना रखते हैं और वो ब्रह्म ज्योति में समा जाना चाहते हैं। और नंबर तीन भगवान के भक्त। अब जो प्रथम, आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहले कौन से हैं? भौतिक संपन्नता के उपभोगी और शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। उसमें श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये दो को, इसको दो में कैसे डिवाइड किएंगे? सत्काम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना करने वाले। कुछ तो सत्काम शास्त्र विधि विधानों के द्वारा इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं और कुछ बस अपना जीवन बिता रहे होते हैं, कर्म योग करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते, लेकिन बस वो इस समझते हैं कि भाई विधि विधानों के द्वारा हमें अपना जीवन बिताना है। लेकिन सकाम कर्मियों के बारे में आगे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक के स्वर्ग को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त नहीं होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं कर सकते। यानी कि अगर वो स्वर्ग में भी चले जाएंगे तो भी, जैसे हमने पढ़ा क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, तो फिर वास्तविक उसका कल्याण नहीं होगा। आगे श्री प्रभुपाद जी एक लाइन में क्लियर करते हैं कि शुभ कर्म तो वे ही है जिनसे मुक्ति प्राप्त हो, बस वही शुभ कर्म। अभी हम, और वो कैसे होगा? जब हम भगवान की भक्ति, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कि जब तक मेरी भक्ति नहीं करोगे तब तक इसी दुखमय संसार में रहोगे, क्योंकि याति मध्या जिनोपि माम, जो मेरी भक्ति करते हैं वही मुझे प्राप्त करते। तो वास्तविक शुभ कर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आगे कि कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्मिक साक्षात्कार से या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता है, वह रंच मात्र भी कल्याणकारी नहीं होता है। यदि भक्ति नहीं है तो समझो चाहे आप कोई भी इनमें से कार्य कर रहे हो, जैसे बाकी के, भले आप ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हो, भले आप विधि विधानों के द्वारा कार्य कर रहे हो, भले आप सकाम कार्य कर रहे हो, यदि उसमें कृष्ण प्रेम नहीं है तो उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है वही गौर तपस्या द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर साफ बात बता रहे हैं कि केवल अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भौतिक असुविधाएं स्वीकार करते हैं, कोई भी तपस्या करते हैं, तो केवल वही शुभ कार्य है। और ऐसा कार्य करने वाले के लिए, ऐसा कल्याणप्रद कार्य करने वाले के लिए भगवान कहते हैं नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो इस चीज को अभी हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार अगर जीव अपने इस जन्म में भगवान की भक्ति स्टार्ट करता है लेकिन फिर भी वो उसको परिपक्व सिद्धि प्राप्त नहीं करता है और निम्न योनि में चला जाता है, फिर भी उसका कोई, उसकी कोई हानि नहीं होती। वास्तव में भक्तों हमें ये जानना ही है कि संसार दुखों का घर है और केवल वही व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, क्योंकि भगवान कहते हैं माया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचर, कि ये प्रकृति मेरी आंख के इशारे पर कार्य करती है। और भगवान इस, ये जो प्रकृति है वो माया है और माया सदैव जी को भ्रमित करती है। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते तब तक हम माया से सुरक्षित नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो भगवान के बहुत घनिष्ठ मित्र थे और संबंधी भी थे, वेदों का ज्ञान था उन्हें, भौतिक वस्तुओं का कोई लोभ भी नहीं था, परंतु कभी कभी कृष्ण दूसरों को सिखाने के लिए अपने भक्त को मोहित कर देते हैं। अब जैसे हम देखते हैं भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन ने पहले अध्याय में बहुत से प्रश्न किए कि मैं अगर युद्ध नहीं करूंगा तो पाप लगेगा, परिवार की रस्में नष्ट हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी। और शास्त्र कहता है जो इन समस्त दोषों का कारण बनता है और वो अवश्य नरक में जाता है। और अपनी हर बात को गुरु साधु और शास्त्र के प्रमाण पर सिद्ध भी कर रहा था अर्जुन, परंतु केवल एक ही विषय में बात नहीं कर रहा था जो कि गोल ऑफ द लाइफ है, जो क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना। इसके विषय में कोई बात नहीं की। अर्जुन माया से परे है, वो तो ड्रामे में हमारा पार्ट कैरेक्टर कर रहा था कि जीव इस संसार में समस्त विधि विधानों को पालन तो करता है लेकिन वास्तविक जो कल्याण प्रद कार्य है कृष्ण भक्ति, उसके विषय में नहीं सोचता। परंतु भक्तों, वास्तविकता तो ये है कि इस संसार में आप किसी भी हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच जाओ, अगर आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करोगे तो आपको अवश्य कष्ट भोगना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका आए थे, उस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन था, जो संसार का सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति था। उसके पास बेशुमार धन था, मिलिट्री फोर्स उसके पास थी और वो इतना ज्यादा सुखी था, केवल अमेरिका ही नहीं अन्य सारे देश भी उसके कंट्रोल में थे। परंतु उसने जो ये पोजीशन प्राप्त की थी वो उसको बहुत आसानी से प्राप्त नहीं थी। उस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। जैसे आज का मनुष्य धन और यश और भौतिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए अपने पूरे जीवन को वेस्ट कर देता है, तो जीव बहुत ज्यादा मेहनत करता है भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, तो उसने भी बहुत की थी। अगर नहीं किया तो क्या, केवल भक्तों का संग और भगवान की भक्ति। भले ही कुछ समय के लिए सबको ऐसा दिख रहा था कि कितना सुंदर जीवन है उसका, कोई कष्ट नहीं है, काश हम भी इतने सुखी होते, परंतु कुछ समय के बाद लोभ और अहंकार, काम वासना के कारण उससे कुछ ऐसी गलतियां हो गई कि उसका सारा मान सम्मान नष्ट हो गया। पूरी दुनिया में वो अत्यंत ही कुविख्यात हो गया, उसके सारे पावर्स ले लिए गए और उसको रिजाइन करने के लिए विवश कर दिया गया। उस समय वो कह रहा था कि इस संसार में मुझसे ज्यादा दुखी व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। और अभी कुछ साल पहले ही उसकी मृत्यु हुई और उस वक्त तक वो यही कहता था कि मैं अपने इस दुखी अवस्था को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाया। मैंने 30 साल तक केवल मानसिक तनाव में ही अपना जीवन बिताया और एक क्षण के लिए भी चैन नहीं प्राप्त हुआ। तो भक्तों, ये तो एक भौतिक संसार में जो प्रगति करता है ना व्यक्ति, उसका उदाहरण है कि एक क्षण में उसका संपूर्ण सर्वनाश हो सकता है यदि भगवान उसके कार्य से प्रसन्न नहीं है तो। ये तो भौतिक इस पृथ्वी लोक का उदाहरण है। वास्तविकता तो ये है कि आप 14 लोकों में से किसी भी लोक में ऊंचे से ऊंचे पद को भी प्राप्त कर लो, आपको प्राप्त करने के लिए, उस पद को प्राप्त करने के लिए भले ही आप अपने पूरे जीवन को दाव में लगा दो, परंतु वहां से एक क्षण में ही नीचे गिराए जा सकते हो। भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। भागवतम में एक ऐसी कथा आती है कि स्वर्ग का राजा इंद्र, अभी स्वर्ग के अंदर आप चले जाते हो, आपका पतन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आपको स्वर्ग का राजा इंद्र भी बना दिया जाए तो इंद्र को एक बार ऋषि ने श्राप दिया कि आप सुअर बन जाओ। वह इंद्र जो स्वर्ग में नंदन कानन वन में बहुत आनंद करता है, अब वो गटर में गिर गया, वहां पर अप्सराओं के साथ भोग करता है और यहाँ पर सुवरी के साथ रहने लगा। वह इंद्र जो अमृत का सेवन करता है यहाँ पर विष्टा खाने लगा। लेकिन एक इस संसार की एक बहुत ही विचित्र बात क्या है कि इस संसार में जीव चाहे जिस भी स्थिति में होता है वो समझता है कि मैं ही सबसे ज्यादा, यही इस स्थिति में यदि मुझे भोग प्राप्त हो रहा है अपने इस शरीर के अनुसार, तो समझो यही मेरी आनंद की सबसे पराकाष्ठा है और उसी में उसे आसक्ति होने लगती है। तो वो इंद्र भी अपने उस विष्ठा को खाने में और सुवरी के साथ आनंद करने में बहुत ही व्यस्त हो गया। और लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र अपने पद को भूलकर यहाँ पर सुवर के जीवन में आनंद भोग रहा है, तो ब्रह्मा जी आए और बोले कि चलो, आप इंद्र हो, आप स्वर्ग के राजा हो, मेरे साथ चलो। लेकिन उसने पता है क्या किया, बोला कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ पर कितना बिजी हूँ, मेरी एक सुंदर सुशील पत्नी है, इतने प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन सबको छोड़कर आपके साथ कैसे जा सकता हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत इनके, मैं इनको छोड़ के चला गया तो इनका कौन ख्याल रखेगा, मुझे इनका पालन पोषण करना है, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। इस भौतिक जगत की माया के कारण जीव समझता है कि ये संसार में मुझे जो स्थिति मिली है उसी स्थिति को मेंटेन करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। हालांकि समस्त शास्त्र बताते हैं, गुरु बताते हैं, भगवान बताते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम मेरे अंश हो, परंतु इस भौतिक जगत से हमें इतना प्रेम होता है कि हम अपनी इस वास्तविकता को भूल जाते हैं कि इस भौतिक जगत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा धाम वैकुंठ लोक है, हमारी पोजीशन सच्चित आनंदमयी है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, परंतु फिर भी उस समस्त सुख को छोड़कर इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। भगवान बार बार आते हैं हमें बुलाने के लिए, गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से, परंतु आज का जीव यही कहता है जो उस समय इंद्र कहता था, क्या मेरे पास समय नहीं है भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी कथाओं को श्रवण करने के लिए। हम भगवान की दिव्य संगति को छोड़कर इस भौतिक जगत की विष्ठा को खा रहे हैं सुअर की तरह। जानते हैं भक्तों विष्ठा किसको बोलते हैं? हम जो मल त्याग करते हैं ना, उसको विष्ठा बोलते हैं। और जब वो जो खाता है वो सुअर होता है। उसी प्रकार जो भौतिक वस्तुएं, जो भौतिक सम्मान, जो भौतिक प्रगति मार्ग को त्याग कर ऋषि और भक्तजन, ये सब चीजों को त्याग दिया उन्होंने और वो भगवान की भक्ति में लग गए। और आज हम, क्योंकि उन्होंने इसको त्यागा है तो ये मल है, क्योंकि हम जो त्यागते हैं वही मल है ना, तो ऋषियों ने और भक्तों ने जिसको त्यागा है वही मल है, वही विष्ठा है, और उसी विष्ठा का सेवन आज हम कर रहे हैं, तो उन ऋषियों की नजर में भी हम उसी सुअर की तरह जी रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जैसे मैं आपको इंद्र की कथा सुना रही थी, तो आपको इंद्र की स्थिति पर रहम आ रहा था कि बेचारा भूल गया अपनी स्थिति को, परंतु जरा ध्यान से देखें तो हम सब भी तो वही कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक जगत में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम इस संसार में आ जाएं और आनंद भोगते 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 अपनी स्थिति को भूल जाएं और फिर हम प्रगति कर सकते हैं। इस संसार में जो भी प्राप्त होगा वो सब नष्ट हो जाएगा, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि भगवान कहते हैं नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, लेकिन यदि आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो आपकी दुर्गति कभी नहीं होती है, भले ही आपको पशु जीवन ही क्यों न मिल जाए। तो इसके लिए हम एक बहुत ही सुंदर उदाहरण लेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण से कि महाराजा भरत भगवान के बहुत बड़े महान भक्त हुए। उन्होंने अपने बहुत ही सुंदर सुशील और संपन्न राज्य को छोड़कर, सुंदर पत्नी को, अपने संतान को छोड़कर, धन संपत्ति का परित्याग करके वो जंगल में जाकर भगवान की भक्ति करने लगे और अत्यंत ही प्रेम से भगवान के नाम का जप करते थे। परंतु अब उन्होंने क्या किया, वहां पर जाकर साधु संग छोड़ दिया, श्रवण करना छोड़ दिया और करने लगे भगवान का स्मरण। लेकिन शास्त्र कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, आपको पहले श्रवण करना है उसके बाद कीर्तन करना है, क्योंकि श्रवण किससे करेंगे, साधु संग से। साधु संग हम जीवन में नहीं छोड़ सकते, श्रवण के बाद कीर्तन और कीर्तन के बाद ही स्मरण संभव है। अगर हम श्रवण छोड़ देंगे तो स्मरण टूट जाएगा, कीर्तन टूट जाएगा और स्मरण भी टूट जाएगा। तो ऐसा ही हुआ कि वो कर रहे थे भगवान की भक्ति, सब कुछ परित्याग करके आए थे। एक बार क्या हुआ, एक हिरण जो कि गर्भवती थी उसके पीछे शेर लगा और शेर उसके पीछे दौड़ रहा था, तो वह हिरण अपने आप को बचाने के लिए आगे जा रही थी। तो गंडकी नदी जब वो पार कर रही थी तो उस समय उसने छलांग मारी पार करने के लिए, परंतु उसके गर्भ में जो संतान थी उसका मिसकैरेज हो गया, वो गिर गई और हिरण उस तरफ आ भी गई, परंतु वो ये देख न सकी कि मेरा शिशु इतना नन्हा सा, वो तो दरिया में डूब जाएगा, मर जाएगा, और उसके दुख में वो मर गई। शेर तो चला गया क्योंकि शेर पार नहीं कर पाया, इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाया, लेकिन हिरण बचाने के बावजूद भी इस दर्द से कि क्योंकि माता का हृदय है उसका, और एक माता कभी भी नहीं देख सकती कि उसकी संतान इतनी ज्यादा, मतलब संतान को मरते हुए कभी नहीं देख सकती। परंतु आजकल माताएं अपने स्व इच्छा से निष्करेज करवाती, अपनी संतान का अभावशन करवाती हैं, मतलब उनके हृदय में अब उतनी भी करुणा नहीं है जितनी कि जानवर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उतना भी नहीं है। वो अपने अंश को, अपने ही संतान को गिरा देती हैं, गर्दन में बहा देती हैं। तो लेकिन शास्त्र हमें सिखाता है कि जानवर भी होते हैं, वो भी अपने संतान से प्रेम करते हैं, उनके हृदय में भी करुणा होती है। बहरहाल जब महाराजा भरत ने देखा कि ये छोटा सा नन्हा सा हिरण का बच्चा, अगर मैंने इसकी सुरक्षा नहीं की फिर तो वो मर जाएगा, मेरे अलावा वो है ही कौन इसकी रक्षा करने के लिए, तो उसको पानी से निकाला और उसकी बहुत ही प्रेम से पालन उसका करने लगा। और इस तरह से करते करते उस हिरण के बच्चे में उसका बहुत ज्यादा मोह होने लगा, उसकी आसक्ति होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि उन्होंने भक्तों का संग छोड़ दिया था, श्रवण छोड़ दिया था। इसी प्रकार इस संसार में बहुत सारे कार्य हम समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उन कार्यों को करने के लिए कभी कभी हम अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी साधना को छोड़ देते हैं, अपने श्रवण को छोड़ देते हैं, अपनी संख्या, नाम संख्या को छोड़ देते हैं। तो वास्तव में साधना का क्या मतलब है? साधु संग, भागवत श्रवण करना, शास्त्र अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, और नियमित रूप से प्रभात साधना करना, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपना नियमित जप करना। आजकल हम जप का नियम तो ले लेते हैं कि हम चार माला करेंगे, छह माला करेंगे, आठ माला करेंगे। वास्तव में श्री प्रभुपाद जी ने कहा है कि एक इंसान को डेली 16 माला जप करनी चाहिए, लेकिन हम अपने कार्यों में इतना बिजी हो जाते हैं कि जो नियमित हमने नियम भी लिया होता है ना, उसको भी पूरा नहीं करते। यस्टरडे जपा क्यों? आज की जपा होनी चाहिए, डेली की जपा होनी चाहिए। अपनी साधना से हमें कभी भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए, सदैव सतर्क रहना चाहिए। भगवान से प्रार्थना यही करनी चाहिए कि भगवान कभी ऐसा दिन ना दिखाना कि मैं अपनी साधना को पूरा ना कर सकूं। कभी कभी हम दुनिया के कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी जप करने के लिए हम समय नहीं निकालते। कुछ लोग तो सोचते हैं कि इस जीवन में हम जो कार्य कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो हम स्टडी कर रहे हैं, माता हैं तो घर संभाल रही हैं, पति है तो काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो समझते हैं वर्क ही वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। जो हम कार्य कर रहे हैं, यदि हम अपना कार्य सही तरह से कर रहे हैं तो वही इबादत है, परंतु ये हमारा मत है। कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा है। कृष्ण कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्य लोकोयम कर्म बंधना। अगर तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते हो तो जो भी कार्य करोगे वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बंधन का कारण बनेगा। केवल कृष्ण भक्तिमय कर्म ही बंधन से मुक्ति प्रदान करता है, अन्यथा जो भी कार्य है वो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाते हैं। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं कि हमारी साधना कठोर होनी चाहिए, हमारा नियत में जप कठोरता से हम उसको पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी से हमारी चेतना शुद्ध होगी, और जब चेतना शुद्ध होगी तभी ही हम अपने कार्य को भक्ति बना सकते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध करने जा रहा था, शंख बज गया था, लेकिन भगवान ने उसे रोक दिया, युद्ध नहीं कर रहा है। अब क्या कर रहा है? वो श्रवण कर रहा है। भगवान से पूरे 700 श्लोक सुने उसने, और उसके बाद श्रवण करने के बाद जब उसने युद्ध करना शुरू किया, रोज करोड़ों लोगों को मारता था मगर बिना बंधन के, कोई बंधन उसको नहीं बांध रहा था, कोई अपराध नहीं लग रहा था, क्योंकि अब जब हम कृष्ण चेतना में रहकर कार्य करते हैं, गुरु के द्वारा श्रवण करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, तभी हमारा कर्म जो है वो पूजा बनता है। जब तक हम श्रवण नहीं करते, आदेशों का पालन नहीं करते, तो कर्म केवल बंधन और दुख का कारण बनता है। इसलिए भक्तों, हमें अवश्य अपने जीवन में श्रवण और कीर्तन के लिए समय निकालना चाहिए, और अपने जप की संख्या को बहुत दृढ़ता से पूरा करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस तत्वदर्शिनः, कि आपको एक तत्वदर्शी गुरु के पास जाना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम गुरु नहीं करते ना, तब तक हम भक्ति में सीरियस नहीं हो सकते। इसलिए हमें अवश्य एक गुरु को स्वीकार करना चाहिए, और जब हम गुरु को स्वीकार करते हैं, उसी दिन हम अपने भगवान को अपनी सीरियसनेस दिखाते हैं कि हम ऐसा नहीं है कि अगर किसी जीव ने गुरु नहीं किया है तो वो भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा है तो वो सब व्यर्थ है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। भगवान उसको स्वीकार करते हैं, वो आपका जमा हो रहा है, लेकिन वो ऐसा है कि ऐसी बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवाया है, पैसे तो जमा हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई आपके पास चेकबुक नहीं है। गुरु जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो हम अगले कर्म नहीं बनाते हैं, बंधन नहीं बनेगा। अब क्योंकि हम भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन वो जो हम पहले बंधन इतने सारे जन्मों से जो हमने कर्म किए हैं, वो बंधन तोड़ने के लिए गुरु का आश्रय, एक शुद्ध गुरु का आश्रय बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि भगवान कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनाः पुण्यकर्मणा, जिनके पूर्व जन्मों के समस्त अपराध नष्ट होंगे और जिनके पाप समस्त समाप्त हो जाएंगे, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजन्ते माम दृढ़व्रता, केवल वही सदैव मेरी भक्ति कर सकते हैं। तो जिस दिन हम गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं, उस दिन गुरु महाराज हमें नया जन्म लेते हैं। जब दीक्षा होती है तो नया नाम मिलता है, और हमने जितने भी पूर्व जन्मों में कुकर्म किए होते हैं, गुरु महाराज हमारा संरक्षण हमें प्रदान करते हैं कि अब तुम्हारा नया जन्म है, और तुम्हारे इस जन्म की गारंटी मैं लेता हूँ कि मैं तुम्हें अवश्य भगवान के पास पहुंचाऊंगा। जब तक हमारे पास शुद्ध गुरु का सानिध्य नहीं होगा, तब आध्यात्मिक राह में फिसलने के बहुत सारे अवसर होंगे और हम नहीं कर पाएंगे, उसको आगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि गुरु का सानिध्य होगा तो गुरु पग पग पर अलग अलग तरीके से हमें सावधान करेंगे। तो महाराज भरत को हिरण के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई। कथा आप सब जानते हैं कि मृत्यु के समय वो केवल हिरण को ही याद कर रहे थे, जिसके कारण उसे दूसरा जन्म हिरण का मिला। और यहाँ पर हमारी ये बात शुरू होती है जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि असफल योगी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण ना करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावना अमृत कभी भी विस्मृत नहीं होती है। भले ही उसे अगले जन्म में कोई पशु योनि भी प्राप्त हो जाती है, फिर भी वो अपने उस कृष्ण भावना अमृत को सदैव याद रखता है। तो पशु योनि यानी उसको अब हिरण का जन्म मिला, परंतु उस जन्म में भी उसने याद रखा, क्योंकि उसकी चेतना मानव की थी, उसने भगवान की भक्ति की थी। और भगवान कहते हैं, नहीं कल्याण कृष्ण कश्चित दुर्गतिम तातगच्छति, जिसने एक बार कल्याण कृत किया। यहाँ तक भगवान ने कह दिया 2.40 में, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि यदि भक्ति में थोड़ी सी भी प्रगति की जाए तो भी वो महान भय से आपकी सुरक्षा, आप कर्मों के अनुसार जन्म मिलेगा लेकिन भगवान की भक्ति सदैव आपकी सुरक्षा करती रहेगी। तो हिरण के शरीर में भी उसकी मानव चेतना थी, उसे याददाश्त था कि पिछली जन्म में मैंने क्या किया था, अब उस गलती को मुझे इस जन्म में नहीं दोहराना है। इस हिरण के जन्म में भी वो सदैव सोच रही थी क्योंकि पिछले जन्म में मैंने साधु संग छोड़ दिया था, श्रवण करना छोड़ दिया था जिसके कारण मुझे ये दुर्गति प्राप्त हुई, अब इस जन्म में भी मैं सदैव साधु संग करूंगी और भगवान की कथाओं का श्रवण करूंगी। वास्तव में भक्तों, भगवान हमारे हृदय में बैठे होते हैं। जब हम सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करने का प्रयास करने के बारे में खाली सोचते हैं तो भगवान हमें अवसर प्रदान करते हैं। उस जंगल में बहुत सारे साधु आते थे और भगवान की कथाओं करते थे और हिरण एक ही जगह पर बैठकर सदैव उनकी कथाओं को श्रवण करती थी। ज्यादा खाना पीना घास और कुछ में भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी, सदैव श्रवण करते करते और अंत में उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उसको दोबारा जन्म मिला। अब देखो पशु योनि से अब वापस उसको एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और उस जन्म में उसे पूर्व दोनों जन्मों के बारे में याद था कि पहले में क्या था, महाराजा भरत और उसके बाद हिरण बना, परंतु इस जन्म में वो बने जड़ भरत। जड़ भरत का मतलब होता है कि उसको किसी भी चीज के बारे में ना मोह था, ना आसक्ति थी, ना ज्ञान, भले वो उसके पास बहुत सारा ज्ञान था, उसके पिताजी बहुत ज्यादा विद्वान ब्राह्मण थे, उसके भाई भी सारे शास्त्र के ज्ञाता थे, वो भी ज्ञानी था, परंतु वो ऐसा सोच रहा था कि अगर मैंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया तो सब लोग मेरा आदर करेंगे, मुझे अहंकार हो जाएगा। और वास्तव में भक्तों, अगर हम संसार के समस्त सुखों का परित्याग कर दें परंतु फिर भी हृदय के अंदर ये अभिमान रह गया कि देखो मैंने सब परित्याग कर दिया, तो फिर हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान बताते हैं कि अमानी न मान देना कीर्तनी है सदाहरी। यदि हम अपने लिए मान की इच्छा करेंगे तो हम कभी भी सदा भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते। वास्तव में बड़े बड़े सन्यासी सब कुछ छोड़कर जंगल में जाते हैं लेकिन उन्हें ये अभिमान रहता है कि देखो हम कितनी भक्ति कर रहे हैं, तो वो अभिमानी शख्स जो है वो भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो केवल अपने सन्यासी तपस्या का बोझा ही उठा रहा होता है। भगवान को प्रसन्नता करने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या? विनम्रता। यदि हम विनम्रता से भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे तभी ही हम भगवान को संतुष्ट कर सकेंगे। तो जय भरत सदैव उल्टे कार्य करता रहता था। उनके पिताजी उनको बोलते थे कि फर्स्ट यू रिस्पॉन्ड टू द नेचर देन वॉश यू हैंड, लेकिन वो क्या करते थे, पहले बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हाथ धोते थे उसके बाद विष्टा करने जाते थे। मतलब वो जो भी करते थे उल्टा ही करते थे। तो अब महाराजा भरत हिरण के बाद जाड़ भरत बने, परंतु कोई कार्य नहीं करते थे। पिता सदैव सब्र से उन्हें समझाते थे परंतु कुछ समय के बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। भाई जो थे उनसे ये उसको सहन नहीं कर पाते थे। उस समय से थे कितना ज्यादा बेवकूफ है, ये तो कुछ समझता ही नहीं है, इस बेकार की आत्मा का क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उसको बोला तुम खेत में ऐसे पुतले खड़े होते ना जैसे, उस तरह से खड़ा कर दिया कि चलो ठीक है कोई और काम तो करता नहीं है, यहाँ पर खड़ा होगा तो पशु हमारे खेत में आएंगे नहीं, समझेंगे कोई खड़ा है। वो जड़ बड़त उसमें भी संतुष्ट था क्योंकि वास्तव में तो संतुष्टि जीव को तब होती है अगर कृष्ण प्रसन्न है, तो समझो हमारा जीवन सफल है। भले ही पूरी दुनिया हमसे घृणा करती है लेकिन यदि हमारे कार्य से कृष्ण प्रसन्न है तो संतुष्टि प्राप्त होती है भक्त को। और यदि कृष्ण असंतुष्ट है, कृष्ण अप्रसन्न है, फिर संसार भले हमारे चरणों में भी गिर जाए, पूरे संसार में की हमें सफलता प्राप्त हो जाए, फिर भी जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ, जीवन व्यर्थ हो गया। तो उस समय वो पुतला बनकर खड़ा था, कुछ डाकू आए वहां पर और उस डाकू बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। क्यों? क्योंकि वो काली माता की ना उपासना करते थे, जानते हैं काली कौन है? शिव जी की शक्ति है काली, और जो लक्ष्मी माता है उनका एक उनका ना अंश है पार्वती, और पार्वती का एक अंश है काली, और वो जो काली माता है वो शुद्ध भक्त भक्ति की प्रतीक है, क्योंकि वो शिव जी की पत्नी है, पार्वती का अंश है। लेकिन भौतिकवादी लोग तमोगुण के कारण अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ लोग काली को मांस मदुरा आदि भेंट करते हैं, और वहाँ पर काली के स्थान में बकरी का और ना भैंस का ये सब खून काली को चढ़ाते हैं। परंतु आप जानते हैं कि शिव जी जो हैं वो विष्णु भगवान के विस्तार स्वरूप हैं। काली शिव जी की पत्नी है, और शिव जी भगवान विष्णु के परम भक्त वैष्णवानाम यथा शंभु। शिव जी कोई ऐसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते जो कि भगवान नहीं खाते, और काली माता कोई ऐसी वस्तु को स्वीकार नहीं करती जो शिव जी नहीं खाते, क्योंकि शिव जी वैष्णव हैं। तो क्योंकि वैष्णव वो मांस इत्यादि को स्वीकार नहीं करते, तो काली माता क्योंकि शिव जी की पत्नी है तो वो भी मांस इत्यादि को कभी भी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि जो उनका पति नहीं करता, एक साधारण भी पतिव्रता स्त्री अपने पति की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करती है। तो ये काली माता जो कि लक्ष्मी महारानी या पार्वती महारानी का अंश है, वो भला ऐसा कैसे कर सकती है? तो उनको जो उनके भक्त लोग अर्पण करते हैं, वो काली माता क्या करती है, वो सब भूतों को खिला देती है, क्योंकि भूत अब ऐसी बात है तमोगुण के देव हैं वो, उनको और भी बहुत सारे संसार का प्रलय करना होता है और राक्षसों के साथ है ना व्यवहार करना होता है बहुत सारा, तो इसलिए उनके बहुत सारे भूत जो है उनके गण होते हैं महादेव के, तो उनको खिला देती है, और ये भूतों का बचा हुआ प्रसाद यहाँ पर आता है, और इसको बोलते हैं ये काली माता का प्रसाद है। ये काली का प्रसाद नहीं होता, क्योंकि काली कभी भी मांसाहार नहीं कर सकती, क्योंकि वो वैष्णव की पत्नी है। तो ये जितने भी डाकू थे ये लोग भूतों से बहुत सारे शक्तियां प्राप्त करते हैं, और मानव की भी बलि देते हैं वहां पर। तो वो जो डाकू थे वो भी इसी तरह के थे, काली के उपासक थे, ढूंढ रहे थे कैसे कोई पूर्ण मानव प्राप्त हो उसको पकड़कर वो काली को बलि देने के लिए जाना चाह रहे थे। तो जड़ भरत को जब देखा तो जड़ भरत को पकड़ा, जड़ भरत ने बोला चलो, जड़ भरत ने बोला चलो, वो तो चल रहे थे, उनको तो कोई इस बात से था ही नहीं कि कौन मुझे लेकर जा रहा है। उसको लेकर गए, उसको स्नान कराया, सुंदर सुगंधित तेल लगाया, नए सिल्क के वस्त्र आभूषण उसको पहनाए, बाल सही किए, अब उसको काली के सामने लेकर गए, और भद्रकाली के वहीं पर ना एक पुजारी था, उसने एक आरती बनाई और उसकी पूजा करना शुरू की। काली माता के चरणों में जड़ भरत का सर रखा और संस्कृत में बहुत ही सुंदर मंत्र उच्चारण करने लगे। अब ये पंडित डाकू थे, माता के बहुत बड़े पुजारी थे। हमारे भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे माता के पुजारी होते हैं, हम समझते हैं भक्त हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, देखें कि सब कुछ करने के बाद अब बलि देने की बारी आई। उसने बहुत बड़ी तलवार निकाली और जर भरत देख रहे थे और साथ साथ में भगवान का स्मरण कर रहे थे। वो जानते थे मारे कृष्ण राखे खेर, राखे कृष्ण मारे खेर, अगर कृष्ण मारना चाहते हैं तो ओके, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यदि कृष्ण मेरी रक्षा करना चाहते हैं तो फिर ये तलवार मेरा क्या बिगाड़ेगी। ये निर्भयता जो है वही एक भक्त का वास्तविक लक्षण है। निर्भय का मतलब होता है श्रद्धा है कृष्ण के ऊपर। यदि हम बहुत सारी श्रद्धा के बारे में बात करना बहुत आसान है, परंतु वास्तविक परीक्षा कब होती है, जब उस मृत्यु करीब आ जाती है, जब जीवन जो है उसकी बाजी लगती है, तब वास्तव में पता चलता है कि हमारी कितनी श्रद्धा है भगवान के ऊपर, या श्रद्धा है या दिखावा करते हैं, सब कुछ पता चल जाता है जब कोई ऐसी विपत्त स्थिति आती है। तो काली माता इस अन्याय को सहन नहीं कर सकी, और क्योंकि वो भगवान के भक्त थे तो जो एक वैष्णव कभी भी भक्तों के ऊपर अत्याचार सहन नहीं कर सकता। भद्रकाली की मूर्ति से भद्रकाली व्यक्तिगत रूप में दर्शन दिया। और बहुत उस समय क्या किया उसने, पुजारी के हाथ से तलवार ली और उसी तलवार से पुजारी का सिर काट दिया। और उसी काली में से बहुत सारे स्वरूप प्रकट हुए और सारे डाकुओं का सिर काट दिया। सारे डाकुओं के सिरों को ऐसे हाथ में बॉल की तरह वो उछाल रहे थे। और क्योंकि वहां पर एक भक्त को कष्ट देने की याचना की गई थी, इसलिए बहुत ज्यादा क्रोध में होकर बहुत बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। देवी देवता भी उस व्यक्ति को प्रणाम करते हैं जो भगवान का भक्त होता है, जो हमेशा भगवान का स्मरण करता है और हर स्थिति में भगवान के आश्रय होता है। तो इसलिए माता काली ने जड़ भरत की बहुत ना उसकी रक्षा की और उनको प्रणाम किया और बहुत सारे आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। उसके बाद एक दिन वहीं से राजा रघुगण यात्रा करते हुए सत्य की खोज करते हुए निकले थे। वो गुरु की तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसा सतगुरु मुझे प्राप्त हो जो मेरा मार्गदर्शन करे। भक्तों, कृष्ण सबके हृदय में है। वो भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ। तो जैसी हमारी भावना होती है, भगवान स्वयं ही ऐसा गुरु हमें प्राप्त करा देते हैं। अवश्य हमें शुद्ध सतगुरु, यदि हम सत्य को जानना चाहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की वास्तविकता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृष्ण अवश्य ऐसे ही गुरु से हमारी मुलाकात करा देते हैं। यदि हम धोखा खाना चाहते हैं, सांसारिक इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, तो भगवान हमें ऐसे ही चिटर गुरु से मुलाकात करा देते हैं। तो कृष्ण की कृपा से उस समय राजा रघुगण की पालकी को उठाने वाला एक कहार घायल हो गया। तो अब बोला राजा ने कि मुझे तो जल्दी जाना है आगे यात्रा पे, तो आप किसी भी व्यक्ति को लेके आओ। जब दूसरे कहार ढूंढने लगे तो उनको दिखा जड़ भरत, बहुत ही पहलवान था। बोला आ जाओ पालकी उठाओ राजा, वो चले और पालकी उठाई एक साइड पे, वो भी लग गए। परंतु रास्ते में क्या था कि एक चींटी रास्ता पार कर रही थी। भक्त का स्वभाव है कि वो किसी दूसरे का दुख दर्द सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि हर एक जीव कृष्ण का अंश है। और भगवान बता दें 5.18 में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी शुनि चाय वश्व पाप के च पंडिता समदर्शनी, जो वास्तव में पंडित होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वो समान दृष्टि होते हैं। ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते सबको बराबर समझते हैं। जो भगवद गीता की शिक्षा है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वास्तव में केवल उसी से कल्याण होने वाला है। तो राजा रघुगण ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों इस तरह से उछल उछल कर चल रहे हो। तब उस समय राजा रघुगण को ज्ञान दिया है जड़ भरत ने, और क्या उसने बोला है कि ये आप अपने आप को राजा समझते हो, वास्तव में आप ये शरीर नहीं हो, आप शाश्वत आत्मा हो। वास्तव में भक्तों, ज्ञान की शुरुआत इस अंतर को जानना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम भगवान के नित्य दास हैं। अगर हम ये नहीं जानते तो भले बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हम प्राप्त कर लें, इस संसार में कितना ही भौतिक यश और भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लें, यदि आत्मा का ज्ञान नहीं है तो वो सब फिजूल है। तो भगवान कहते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, कि यही एक समस्त ज्ञानों का राजा है। और प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम, इसी यही है जिसके द्वारा आपका कल्याण हो सकता है। यही ज्ञान कृष्ण के साथ में कैसे अपने संबंध को जोड़ूं, वही केवल वही कल्याण कृत कार्य है। और यही ज्ञान दिया राजा रघुगण को जड़ भरत ने। सत्य केवल इतना है कि हम भगवान के अंश हैं, हर वस्तु को भगवान की सेवा में समर्पित करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे हर कार्य को, हमारे हर स्वधर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है। और भगवान कहते हैं, यदि आप भक्ति में आगे आते हो लेकिन अगर कोई कारण से आप उसको पूरा संपन्न नहीं कर सकते तो भी आपकी कभी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि आपने जो भक्ति की है वो कभी भी विनाश नहीं, भक्ति का 1% भी नाश नहीं होता। यही श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान पूरे विश्व के लाभ के लिए है, और हमें भगवद गीता के द्वारा हर एक हम सब का ये कर्तव्य है कि गीता को हम सही रूप से समझें और पूरे संसार में इसका प्रचार करें। ज्ञान यही है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश। भगवान कहते हैं ममई वंश जीवलों के जीव भूत सनातना, और हम नित्य रूप से भगवान के सेवक हैं। हमें भगवान की सेवा के लिए ही जीवन में इस संसार मिला, ये जीवन मिला है, और इस संसार में हमें भगवान की सेवा करनी। दुनिया की आज्ञा का पालन करते करते हम अपने वास्तविक भगवान की आज्ञा को भूल जाते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं और भोग भोगने को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। परंतु और जिनसे हम प्रेम करते हैं, प्रेम के नाम पर हम सोचते हैं कि उनको शारीरिक आनंद प्रदान करके हम उनके साथ प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, परंतु सच्चा प्रेम क्या है कि हम उनको भक्ति की सुंदर भेंट प्रदान करें। कि आपका जीवन का कल्याण तभी होगा जब आप भगवान की भक्ति करोगे। तो हमें ये सोचना चाहिए, जैसे भगवान कहते हैं कि इस संसार में चाहे दूसरे संसार में, पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते, उसका कभी भी विनाश नहीं होता, चाहे वो किसी भी अवस्था को प्राप्त कर ले। अगर वो भक्ति से भक्ति से गिर भी गया है, उसको निम्न योनि भी प्राप्त हो गई है, तो भी उसका कभी विनाश नहीं होता, उसकी भक्ति का एक कर्ण भी जाया नहीं होता। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम दात गच्छति, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती जो इस कार्य को करता है, जो भगवान की भक्ति करता है। तो हम सबको अधिक से अधिक संजीदगी के साथ, सीरियसनेस के साथ अपने जीवन के उद्देश्य को याद रखना है, क्योंकि जीवन का कल्याण इसी से होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।